आजानुलंबित भुजो कनकावधातो संकीर्तनैक पितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो वंदे श्रीकृष्णचैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौरवोदय पुष्पमृदो चित्रोच्छन्दो तमोनिदो पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासिनी गौर भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रतिष्ठाय गुरुकुले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष श्रीमद पाश्चात्य प्रेषितारिणी सो मैं आप सब भक्तों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आपकी चरण रज अपने सिर पर धारण करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि हम मिलके श्रीला हरिदास ठाकुर को ग्लोरीफाई कर पाए। सो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है
थोड़ा टाइप कर सकते हैं इसको।
सो श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितमृत में बताते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने चार भक्तों के द्वारा चार सिद्धांतों की स्थापना की। उन्होंने रामानंद राय के द्वारा इंद्रिय नियंत्रण पर का सिद्धांत स्थापित किया। उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार रामानंद राय जब जगन्नाथ वल्लभ नाटक के लिए देवदासियों को तैयार करते थे, अपने हाथों से उनको नहलाते थे, उनको तेल लगाते थे, मालिश करते थे, श्रृंगार करते थे, उनके मन में लेश मात्र भी विकार नहीं आता था। चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया रामानंद राय के द्वारा कि इंद्रियों के मन पर नियंत्रण क्या चीज होती है। हम नहीं कर सकते लेकिन हमारा हमें पता होना चाहिए लक्ष्य क्या है। और चैतन्य महाप्रभु ने दामोदर पंडित के माध्यम से बताया कि निरपेक्षता क्या होती है। दामोदर पंडित अगर कहीं पर कुछ गलती है तो चैतन्य महाप्रभु को भी टोक देते थे, है ना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने दामोदर पंडित को नवद्वीप भेज दिया कि आप वहां जाके सारे भक्तों की रक्षा करो। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी के द्वारा विनम्रता का जो सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया कि विनम्रता की पराकाष्ठा क्या है। कि सनातन गोस्वामी मई जून के महीने में चैतन्य महाप्रभु से के दर्शन करने के लिए सिद्ध बकुल से जब गए चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए तो सिंह द्वार से होकर नहीं गए, जगन्नाथ मंदिर से होकर नहीं गए, बल्कि समुद्र के रास्ते गए। इतनी गर्म रेत थी, दोपहर का समय था, पैरों में छाले पड़ गए। लेकिन उनको ये चिंता थी कि कहीं जो जगन्नाथ जी के सेवक हैं मेरी छाया ना पड़ जाए उनके ऊपर, क्योंकि मैं बहुत ही दूषित हूँ, मेरी छाया ना पड़ जाए, मेरी छाया पड़ गई दूषित हो जाएंगे, सेवा में विघ्न आ जाएगा। तो और तो और सनातन गोस्वामी ने ये भी सोचा कि मैं चैतन्य महाप्रभु की सेवा ठीक से नहीं कर पा रहा इस शरीर के द्वारा, तो क्यों ना ये शरीर त्याग दूं। तो चैतन्य महाप्रभु ने रोका कि ये आपकी संपत्ति नहीं है, ये मेरी संपत्ति है, आप इसके बारे में निर्णय नहीं ले सकते, इसके बारे में निर्णय लेने का अधिकार मेरे पास सुरक्षित है। और जो चौथा सिद्धांत चैतन्य महाप्रभु ने प्रस्तुत किया वो था सहनशीलता का, सहनशीलता का। तो सहनशीलता का सिद्धांत चैतन्य महाप्रभु ने प्रस्तुत किया श्रीला हरिदास ठाकुर के माध्यम से। चैतन्य महाप्रभु ने श्रीला हरिदास ठाकुर के माध्यम से दिखाया कि किस प्रकार बिना किसी अपराध के जब जो नवाब है उसने काजी ने अरेस्ट कर लिया, उनको गिरफ्तार कर लिया और उनको 22 बाजारों में कोड़े मारने का जब सजा दी गई तो उन्होंने प्रतिरोध नहीं किया, हरिदास ठाकुर ने प्रतिरोध नहीं किया। और हरिदास ठाकुर को जब कोड़े मार रहे थे जो सैनिक हैं और काजी ने बोला था कि अगर तुम्हारे कोड़े मारने से अगर ये नहीं मरा तो मैं तुम्हें मार दूंगा, अगर किसी व्यक्ति को ये बात बोल दी जाए तो आप सोचो कि कितनी ताकत से वो यू नो सजा देगा हमें। तो पूरे ताकत लगाकर मार रहे थे हरिदास ठाकुर को, लेकिन हरिदास ठाकुर थे कि प्राण नहीं छोड़ रहे थे। तो उन सिपाहियों ने हरिदास ठाकुर को रिक्वेस्ट की प्लीज मर जाइए, अगर आप नहीं मरोगे तो वो काजी हमें मार देगा। हरिदास ठाकुर ने कहा आप पे मैं कुछ आपत्ति नहीं आने दूंगा। हरिदास ठाकुर समाधि में चले गए, शरीर में जीवन के कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे थे। तो सिपाहियों ने कहा चलो काम खत्म हुआ, जाके काजी को सूचना दी कि हरिदास मर गए, क्या करें शरीर के साथ, अगर दफनाएंगे तो जन्नत मिलेगी, दफना नहीं सकते, इनको नदी में फेंक दो। तो हरिदास ठाकुर के दिव्य शरीर को उठा के नदी में फेंक दिया। हरिदास ठाकुर समाधि से बाहर आए, तैरकर नदी के उस पार चले गए और चैंटिंग करने। तो हरिदास ठाकुर ने के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया कि जरूरी नहीं है कि आप गलत हो तो ही सहना ठीक है, सही गलत की जो परिभाषा है वो मन का भ्रम है, ऐ भाल ऐ मन ऐ सब भ्रमा, सही क्या है गलत क्या है इसके चक्कर में मत पड़ो, ये मत सोचो कि आपके साथ सही हो रहा है गलत हो रहा है, टाइम वेस्ट मत करो। ज्यादा महत्वपूर्ण विषय वस्तु क्या है, ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि हम क्या अपना मन भगवान कृष्ण के भजन में निवेशित कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमने अपना समय यह सोचने में लगा दिया कि मैं सही था फिर देखो उन्होंने सजा दे दी, या मैं गलत था मुझे सजा मिली अच्छा हुआ, ये सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, सेवा पे फोकस होना चाहिए, पूरा हमारी मानसिकता चेतना सेवा पर केंद्रित होनी चाहिए, बाकी कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, बाकी किसी के बारे में सोचना समय की बर्बादी है ना? तो हरिदास ठाकुर आए क्यों इस संसार में, हरिदास ठाकुर के प्रकट होने का रीजन क्या है? तो जैव धर्म में भक्तिनो ठाकुर बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब भगवान कृष्ण के सारे संगी साथियों को और बच्चों को जब किडनैप कर लिया था, उस दिन बलराम जी नहीं थे। क्यों बलराम जी नहीं थे? क्योंकि बलराम जी का जन्मदिन था उस दिन, इसलिए बलराम जी उस दिन नहीं थे, इसलिए बलराम जी किडनैप नहीं हुए थे। बलराम जी को तो एक्चुअली में पता भी नहीं था क्या हो रहा है ना? लेकिन और बलराम जी को भी भगवान कृष्ण ने विमोहित कर दिया था। ये बलराम जी को मोहित करने की ये प्रसंग ये दिखाता है कि कृष्ण सर्वोपरि है, कृष्ण सबको मोहित कर सकते हैं, कृष्ण सबको मोहित कर सकते हैं, इसलिए कृष्ण परमेश्वर है। बलराम जी को भी कृष्ण मोहित कर सकते हैं, बलराम जी को बिल्कुल भनक मिलेगी। तो हमारे आचार्य ने ये प्रश्न उठाया कि आखिर कृष्ण ने बलराम जी को विमोहित क्यों किया, क्या जरूरी थी मोहित करने की। तो उन्होंने उसका उत्तर दिया कि अगर कृष्ण बलराम जी को विमोहित नहीं करते तो बलराम जी विरह सहन नहीं कर पाते अपने साथियों का, तो बलराम जी को विरह महसूस नहीं हो इसलिए उन्होंने उनको विमोहित कर दिया। तो उन्होंने दूसरा प्रश्न उठाया कि क्या कृष्ण को विरह नहीं हो रहा था, संगी साथी तो चलो बलराम जी को तो नहीं पता था लेकिन कृष्ण को तो पता था कि उनके संगी साथी किडनैप हो चुके हैं। तो हमारे आचार्य एक्सप्लेन करते हैं कि बलराम कृष्ण भगवान कृष्ण ने अपना एक एक्सपेंशन अपने संगी साथियों के साथ में विस्तार कर दिया था, इसलिए उनको विरह नहीं हो रहा था, अपने साथियों के साथ थे। तो चलो एक साल बीत गया, फिर दोबारा बलराम जी का जन्मदिन आया और दोबारा से जब ब्रह्मा जी आए और उन्होंने देखा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, फिर उन्होंने भगवान कृष्ण का ऐश्वर्य देखा, ग्वाल बालों को बछड़ों को लौटा दिया, तो सब बात क्लियर हो गई, खत्म हो गई, भगवान से माफी मांग ली, चले गए, भगवान ने ज्यादा उनको ध्यान नहीं दिया उनके ऊपर। लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी ने भगवान के दर्शन के माफी मांगी और अपने सेवा में चले गए। लेकिन उनके मन में बात कचोटती रही कि मैंने भगवान की जो ब्रज लीला है उसमें मैंने विघ्न डाल दिया, उसका जो अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए ब्रह्मा जी नवद्वीप गए और वहां पे अंतरद्वीप थे, अंतरद्वीप वो जगह है जहां पर मायापुर जो है, आप जो लोग नवद्वीप गए हैं मायापुर गए हैं तो नौ द्वीप हैं, तो उसमें अंतरद्वीप जो है वो सेंटर में है और अंतरद्वीप में ही मायापुर और योगपीठ है जहां पर चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। सो ब्रह्मा जी वहां गए और उन्होंने वहां पर तपस्या की और भगवान प्रकट हुए गौरांग महाप्रभु। जब ब्रह्मा जी ने उनके दर्शन किए तो मूर्छित हो गए, जब चेतना आई तो उन्होंने बोला प्लीज मैं अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, मैं आपकी जो लीला है उसमें मैं इस बार सहयोग देना चाहता हूँ, आप प्लीज मुझे एक अवसर दीजिए, मौका दीजिए। सो चैतन्य महाप्रभु ने कहा फाइन, और ये बात है द्वापर युग के अंत की, द्वापर युग का अंत हो रहा था जब ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको परमिशन दे दी, ठीक है आप आ जाओ। और ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं इतना अपनी प्रेस्टीज से अपने पद से इतना गर्वित हूं, क्या प्लीज मुझे बहुत विनम्र स्थिति में रखिएगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा फाइन, तुम्हें मुस्लिम परिवार में जन्म लेगा ताकि तुम कभी भी गर्वित नहीं हो सको और हमेशा विनम्र भाव से भजन कर सको। इसी बात का वर्णन गौतिनाथ ठाकुर नवद्वीप धाम परिक्रमा में भी कर रहे हैं, जहां पर उन्होंने चर्चा की है नित्यानंद प्रभु और जीवा गोस्वामी की। जब नित्यानंद प्रभु जीवा गोस्वामी को नवद्वीप परिक्रमा करवा रहे थे तो जब अंतरद्वीप में आए तो वहां पर नित्यानंद प्रभु ने यही प्रसंग दोहराया, ब्रह्मा जी के जो मन की स्थिति थी वो बताई और क्यों ब्रह्मा जी प्रकट हुए यहाँ पर, ब्रह्मा जी आए अवतरित हुए यहाँ पर, उन्होंने जन्म दिया हरिदास ठाकुर के रूप में। तो हरिदास ठाकुर की वैसे तो हम मतलब वर्णन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हरिदास ठाकुर के जो मुख्य जो सेवा थी, हरिदास ठाकुर की मुख्य सेवा थी हरिनाम करना और हरिनाम का प्रचार करना। तो उन्होंने दिखाया कई बार कि हरि नाम की क्या महिमा है और उनकी हरि नाम में कितनी श्रद्धा है। एक दफा रामचंद्र खान वो ईर्ष्या कर रहा था हरिदास ठाकुर से कि इसको प्रसिद्धि मिल रही है, उसने वैश्या को भेज दिया हरिदास ठाकुर का पतन करने के लिए। वैश्या ने कहा 3 दिन में पतन कर दूंगी, टेंशन मत लेना घबराना। तो हरिदास ठाकुर के पास गई वो वैश्या, हरिदास ठाकुर भजन कर रहे थे संध्या के समय में। तो हरिदास ठाकुर ने कहा अनफॉर्चुनेटली मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं कुछ संख्या भगवान के नामों का जप करूंगा, अभी मेरी पूरी नहीं हुई, आप बैठो मैं आपको सेटिस्फाई कर दूंगा। तो बैठी रही और हरिदास ठाकुर के हरिनाम सुनती रही। एक दिन बीत गया, दूसरा दिन बीत गया, तीसरे दिन वो वैष्णव और उसने बोला कि मैं आप एक्चुअली मैं आपको आपका पतन करने के लिए आई थी। मैं हरिदास ठाकुर ने कहा मुझे पता है, मैं पहले दिन ही पहचान गया था और मैं चला जाता, लेकिन तुम पर कृपा करने के लिए मैं सिर्फ रुका हुआ था, अब तुम यहाँ पर रुको, मैं जा रहा हूँ, तुम यहाँ पर बैठ के भजन करो, अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मणों में वितरण करो। और प्रभुपाद यहाँ पर चेतावनी दे रहे हैं कि हरिदास ठाकुर की नकल मत करना, कभी भी किसी स्त्री से एकांत में बात मत करना, हम हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर हैं वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। इसलिए चाहे कोई ब्रह्मचारी है, चाहे गृहस्थ है, किसी भी आश्रम में स्थित है, उसको एकांत में उसको कभी भी स्त्री के साथ में बात नहीं करनी चाहिए, स्त्री के साथ बैठना नहीं चाहिए। और श्रील प्रभुपाद ने भी अपने आचरण के द्वारा श्रील प्रभुपाद ने दिखाया। एक बार श्रील प्रभुपाद की बहन, श्रील प्रभुपाद वृद्ध हो चुके हैं, उनकी बहन वृद्ध हो चुकी है, वो श्रील प्रभुपाद से बात करने के लिए आई, तो श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य बैठे थे, उन्होंने बोला चलो भाई बहन आपस में कुछ इन्होंने बात करनी होगी, कुछ हो सकता है कॉन्फिडेंशियल बात करनी हो, तो मैं बाहर चला जाता हूँ। श्रील प्रभुपाद ने कहा कहाँ जा रहे हो, मुझे खतरे में डाल के यहीं पर बैठे रहो, है ना। श्रील प्रभुपाद दिखा रहे हैं कि, और ऐसा नहीं है कि भागवतम में एक्चुअली बताया गया कि जिस प्रकार स्त्री पुरुष के पतन का कारण है, इस तरह पुरुष भी स्त्री के पतन का कारण है, तो स्त्री को भी ये शोभा नहीं देगा, स्त्री के लिए भी उचित नहीं होगा कि वो एकांत में किसी पुरुष भक्त से बात करे, है ना। दोनों तरफ से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और ऐसा नहीं है कि हरिदास ठाकुर का ये जो परीक्षा है ये सिर्फ एक ही बार हुई, दो बार परीक्षा हुई इस तरह से। दूसरी बार तो स्वयं माया देवी हरिदास ठाकुर की परीक्षा लेने के लिए आए, और जब माया देवी डिफीट हो गई तो माया देवी ने कहा कि ब्रह्मा जी तक मेरे इस सौंदर्य से आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकते, लेकिन आप पे कुछ फर्क नहीं पड़ा, आप पे कुछ फर्क नहीं पड़ा। हरिदास ठाकुर जब रघुनाथ दास गोस्वामी के गांव के पास रह रहे थे, हिरण्य मजूमदार और गोवर्धन मजूमदार उनके गांव के पास रह रहे थे, भजन कर रहे थे, तो सारे वैष्णवों ने उनको बोला कि आप प्लीज हरिनाम की महिमा बताइए। तो जब वहां पे चर्चा उठी तो गांव वालों ने बोला कि हरिनाम की बहुत महिमा है, हरिनाम से सारे पापों का क्षय हो जाता है, हरिनाम से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। हरिदास ठाकुर ने कहा नहीं ऐसा नहीं, हरिदास ठाकुर ने कहा कि ये नाम की महिमा नहीं है, ये तो एक्चुअली नामाभास से ही हो जाता है। हरिदास ठाकुर ने कहा कि जिस प्रकार सूर्योदय से पहले अरुणोदय होता है, अभी सूर्य दिख नहीं रहा लेकिन प्रकाश आ जाता है तो सारा अंधकार दूर हो जाता है, भूत प्रेत असुरों का भय खत्म हो जाता है, इसी प्रकार जब नामाभास उदय हो जाए, नाम का आभास मात्र आया, अभी नाम नहीं आया, सिर्फ नाम का आभास मात्र आ गया, तो ये पाप क्षय मोक्ष प्राप्ति ये सब तभी हो जाता है। हरि नाम की महिमा ये नहीं है। तो सबने पूछा हरि नाम की महिमा क्या है, तो उन्होंने बोला हरि नाम की महिमा है कि हरि नाम से हरि भक्ति मिलती है, हरि नाम से भगवान कृष्ण की सेवा करने का अवसर मिलता है। और उन्होंने बोला ऐसा नहीं है कि आप हरि राम बोलोगे तो ही लाभ मिलेगा, हरि नाम की महिमा इससे बहुत ज्यादा है। हरिदास ठाकुर ने बोला कि देखिए अगर कोई व्यक्ति हरि नहीं बोल रहा है और अगर किसी व्यक्ति ने हल रिक्तम बोल दिया, हल रिक्तम, तो हल रिक्तम दो शब्द इकट्ठे बोलने से भगवान ह और री ले लेते हैं और हरि एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये हरि नाम की महिमा है। बोल रहे कि हरि बोलना जरूरी नहीं है। इसी तरह उन्होंने राम का भी उदाहरण दिया कि रा शब्द से कोई शब्द बोला और मा शब्द से कोई शब्द बोला तो भी भगवान राम एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसको वांछित फल प्रदान कर देते हैं। ये हरि नाम की महिमा है। ये हरि नाम से जो है सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो वहां पर एक व्यक्ति बैठे थे गोपाल चक्रवर्ती। तो गोपाल चक्रवर्ती ने बोला क्या उपवास कर रहे हो, ऐसे थोड़े ना होता, तुम तो बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हो, अगर तुम ऐसे ही बोलते रहे ये बात सही नहीं हुई, तुम्हारी नाक काट लूंगा। हरिदास ठाकुर ने कहा अगर ये बात इतनी सी भी जरा से भी गलत हुई मैं खुद अपनी नाक काट लूंगा। और ध्यान देना कि हरिदास ठाकुर भी बहुत सुंदर थे और गोपाल चक्रवर्ती भी बहुत सुंदर था। तो सारे लोगों ने डांटा, सभी लोगों ने डांटा उसको, ये क्या बोल रहे हो तुम, इतने महान वैष्णव हैं इनका तुम अपमान कर रहे हो, भाग जाओ यहां से। तीन दिन में गोपाल चक्रवर्ती को कोढ़ हो गया और कोढ़ के प्रभाव से उसकी नाक गल के गिर गई, सारे उसके हाथ पैर सारे कुंठित हो गए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज कह रहे हैं कि वैष्णव अपराध किया ये फल है, अगर वैष्णव को अपराध किया सब वंश नष्ट हो जाए। रामचंद्र खान ने हरिदास ठाकुर को गिराने की साजिश रची तो रामचंद्र खान के साथ क्या हुआ, उसके दुर्भाग्य से नित्यानंद प्रभु वहां पर आ गए अपने पार्षदों के साथ। और पहले बंगाल में हर घर के बाहर एक दुर्गा मंडप बना होता था जहां पर लोग बैठकर चर्चा करते थे दुर्गा की और उपासना करते थे। हरिदास ठाकुर वहां कर नित्यानंद प्रभु वहां कर बैठ गए अपने पार्षदों के साथ। रामचंद्र खान ने कहा ये कहां भीड़ लगा दी, यहां पर अपने नौकर को भेजा भगाओ इनको यहां से, जाकर इनको बोलो कि जो गायों के बांधने की जगह है वहां जाकर बैठे, वहां पे बहुत जगह है, यहां पे भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। नित्यानंद प्रभु को क्रोध आ गया और वो अपने सभी पार्षदों को लेके उस गांव को छोड़ के चले गए। रामचंद्र खान के पास जिम्मेदारी थी कि वो टैक्स कलेक्ट करके टैक्स इकट्ठा करके नवाब को पहुंचाता था, तो नवाब को पता चल गया ये गड़बड़ कर रहा है, तो उसने अपने सैनिक भेज दिए, एक सेनापति भेज दिया, तो एक मुस्लिम सेनापति के नेतृत्व में बहुत सारे सैनिक आए और वो उसी दुर्गा मंडप में बैठे और सबसे पहला काम उन्होंने किया उस दुर्गा मंडप में। और रामचंद्र खान ने क्या किया कि नित्यानंद प्रभु के जाने के बाद पूरी जमीन खुदवा दी, कि दूषित हो गई थी जमीन को खोद दो ताकि शुद्ध हो जाए जमीन, इतनी हिम्मत उसकी देखी। और जब वो मुस्लिम सेनापति आया, उसने उसी दुर्गा मंडप पे बैठ के सबसे पहला काम क्या किया, उसी दुर्गा मंडप में उसने पहले गायें गाटी और उसी दुर्गा मंडप में उस सेनापति ने उस गाय को, गाय का मांस पकाया और तीन दिन तक उस सेनापति ने और उनके सैनिकों ने पूरे गांव को लूटा, तीन दिन तक, और पूरे गांव में गौ मांस पकाया, पूरा गांव निर्जन हो गया, नष्ट हो गया। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं अगर वैष्णव अपराध करोगे ये फल मिलता है, जिसने किया उसको तो फल मिलेगा ही, पूरा खानदान नष्ट हो जाता है, इसलिए वैष्णव अपराध के प्रति बहुत सावधान रहना चाहिए। एक प्रसंग के ऊपर मैं और चर्चा करूंगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और जो हरिनाम की महिमा बताता है ना। हालांकि हरिदास ठाकुर के साथ बहुत सारे वर्णन है, हरिदास ठाकुर के माध्यम से भगवान ने यह भी स्थापित किया कि वैष्णव होने का मतलब जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेंगे। अद्वैताचार्य ने जब अपने पिता का श्राद्ध किया तो उन्होंने जो श्राद्ध पात्र है, जो पहली ऑफरिंग है भगवान को भोग लगाने के बाद, उन्होंने हरिदास ठाकुर को दी ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर अद्वैताचार्य के माध्यम से यह भी स्थापित किया कि षट कर्म निपुणो विप्रो तंत्र मंत्र विशारदा अवैष्णव गुरु न सार वैष्णव स्व बचो, कि अगर कोई छह कर्मों में बहुत निपुण है, यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह, ये छह कामों में बहुत निपुण है, ब्राह्मण है, लेकिन अगर कृष्ण भक्त नहीं है वैष्णव नहीं बन सकता, वो गुरु नहीं बन सकता। लेकिन अगर कोई चंडाल है, किसी ने कुत्ते का मांस खाने के वाले परिवार में भी जन्म लिया है, अगर वैष्णव है तो वो गुरु बनने के योग्य है। तो चैतन्य महाप्रभु ने स्थापित किया और हरिदास ठाकुर जब नित्यानंद प्रभु कल्याण कर रहे थे जगाई मठाई का, उस समय नित्यानंद प्रभु के साथ हरिदास ठाकुर भी मौजूद थे, उसके ऊपर हम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि हरिदास ठाकुर ने कभी भी, तीन ऐसे भक्त थे जिन्होंने कभी जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं किया, वो तीन भक्त कौन थे, हरिदास ठाकुर, सनातन गोस्वामी और रूपा गोस्वामी, वो कभी भी उन्होंने जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं किया। हरिदास ठाकुर ने इसलिए प्रवेश नहीं किया क्योंकि वो अपने को मुस्लिम मानते थे। रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने इसलिए प्रवेश नहीं किया क्योंकि वो बोलते थे कि हम तो मुस्लिमों से भी गए गुजरे, हम तो मुस्लिमों के भी नौकर हैं। उन्होंने अपने आप को वो दबीर खास और साकर मलिक मानते थे जो नवाब हुसैन ने उनको नाम दिया था। उन्होंने बोला कि हम तो इस लायक ही नहीं है, योग्य नहीं है कि हम भगवान का दर्शन करें, हमारा क्या हालत है, हम लोग भगवान के सामने सबसे आगे जाके दौड़ के दर्शन करने की कोशिश करते हैं। रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हरिदास ठाकुर नहीं जा रहे, हम भाग के जा रहे हैं, हम भगवान का दर्शन करने की हम में इतनी अधिक उत्कंठा है कि हम श्रील प्रभुपाद की तरफ भी पीठ कर लेते हैं, है ना। हमें ये ध्यान नहीं रहता कि जहां पर श्रील प्रभुपाद सदैव भगवान का, कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भी सदैव श्रील प्रभुपाद का दर्शन करना चाहते हैं। हम श्रील प्रभुपाद और भगवान कृष्ण के बीच में आके जोर जोर से हरे कृष्णा बोलते हैं और ये नहीं जान पाते कि हम दोनों, कृष्ण और श्रील प्रभुपाद दोनों के आनंद में विघ्न डाल रहे हैं, है ना। हमें जब भी हम भगवान के दर्शन के लिए सामने आए, हमें जो रास्ता है श्रील प्रभुपाद और भगवान के बीच में, वो रास्ता हमेशा क्लियर रखना चाहिए। और ये जिम्मेदारी अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर माताओं के जिम्मे आती है क्योंकि वो इलाका माताओं का है, सो उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, नहीं। सो हम जिस प्रसंग की चर्चा यहां पर करना चाहते हैं, हम चर्चा करना चाहते हैं कि क्योंकि हरिदास ठाकुर, रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए नहीं जाते थे, तो जगन्नाथ जी स्वयं उनका दर्शन करने के लिए, उनको दर्शन देने के लिए स्वयं आते थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और उनके लिए ढेर सारा जगन्नाथ प्रसाद भी लेके आते थे। सो चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर के रहने की व्यवस्था की थी सिद्ध बकुल में, है ना, अलग से स्थान था वो, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, किसी को कोई डिस्टर्बेंस होने की संभावना नहीं थी, और चैतन्य महाप्रभु रोज दर्शन करके आते थे, और उन्होंने गोविंद की ड्यूटी लगा रखी थी कि डेली आपकी सेवा है कि आप जगन्नाथ प्रसाद हरिदास ठाकुर को देने चाहिए। तो समय के साथ में हरिदास ठाकुर वृद्ध हो गए, तो एक बार गोविंद जो है वो हरिदास ठाकुर के पास जगन्नाथ प्रसाद लेके आए, उन्होंने बोला प्लीज प्रसाद ग्रहण करो। उन्होंने बोला मैं इतना पापी हूं कैसे ग्रहण करूं, मैं जगन्नाथ प्रसाद की वंदना कर देता हूं। उन्होंने थोड़ा सा जगन्नाथ प्रसाद लिया और उसको सम्मान करने के लिए एक्सेप्ट किया। तो जो शब्द प्रयोग हुआ चैतन्य चरितमृत में वो शब्द है करिला वंदन, उन्होंने वंदन किया, एक्सेप्ट किया, है ना। ऐसे नहीं कि मतलब स्वादिष्ट है, अच्छा ओके फाइन, शाही पनीर अच्छा खा जाओ सारा, ऐसा नहीं कर रहे थे, उन्होंने बहुत थोड़ा सा एक्सेप्ट किया। और हम लोगों को भी विशेष रूप से जो पुराने भक्त हैं, जगन्नाथ जी के लिए, कृष्ण के लिए, राधिका रमन के लिए बहुत सुंदर प्रसाद बनना चाहिए, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि ये प्रसाद हमारे लिए नहीं है। फेस्टिवल्स होते हैं और उसमें बहुत सुंदर अगर फीस बनती है तो हमें ध्यान रखना चाहिए ये प्रसाद हमारे लिए नहीं है, ये प्रसाद जो है नए भक्त जो आए हैं उनकी सेवा के लिए, उनको अच्छे से प्रसाद देना चाहिए ताकि वो दोबारा भगवान के दर्शन के लिए आने के लिए उत्साहित। हम लोगों को जो पुराने भक्त हैं उनको बहुत ही सादा प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, थोड़ा मुश्किल है लेकिन प्रयास करेंगे तो हो भी सकता है। सो हरिदास ठाकुर ने कहा कि मैं बहुत हरिनाम के प्रति बहुत अपराध कर रहा हूं, मैं चैतन्य महाप्रभु की सेवा नहीं कर पा रहा, मैं इस योग्य नहीं हूं इसको ग्रहण करने के लिए। तो गोविंद ने जाके ये बात चैतन्य महाप्रभु को बताई, चैतन्य महाप्रभु उनसे मिलने आए, चैतन्य महाप्रभु ने कहा क्या 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 प्रॉब्लम है, क्या बात है, आप थोड़े परेशान लग रहे हो, आपका स्वास्थ्य ठीक है, आपको क्या बीमारी है। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि मेरा शरीर तो ठीक है, हालांकि जर्जर हो चुका था शरीर, कह रहे मेरा शरीर तो ठीक है लेकिन मेरी बीमारी है कि मेरा हरि नाम में ध्यान नहीं लग रहा। नामाचार्य हरिदास ठाकुर ये बात कह रहे हैं कि मेरा हरि नाम करने में ध्यान नहीं लग रहा, रुचि नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा आप वृद्ध हो चुके हो, थोड़ी सी माला घटा दो, आप थोड़ी कम माला करो, थोड़ा रेस्ट किया करो। हरिदास ठाकुर ने कहा मेरा ध्यान ही नहीं लग रहा माला, आप कह रहे हो घटाओ, बड़ी मुश्किल से थोड़ी बहुत कर पा रहा हूं माला। तो हरिदास ठाकुर ने कहा, हरिदास ठाकुर से चैतन्य महाप्रभु ने कुछ प्रश्न किए उस समय। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि देखो मेरा मन बहुत चिंतित है। हरिदास ठाकुर ने कहा क्यों आपका मन चिंतित है। तो उन्होंने बोला चलो वैष्णवों का तो कल्याण हो रहा है, जो जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए आ रहे हैं उनका तो कल्याण हो रहा है, लेकिन यवनों का क्या होगा, जो यवन है म्लेच्छ है उनका कल्याण कैसे होगा। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि आपकी कृपा से अगर यवन और म्लेच्छ मरते समय हा राम बोलेंगे तो कृष्णा एक महान भक्त जब बहुत ही विरह में होता है और उस समय वो बोलता है हे राम तो कृष्णा हा राम को हे राम करके स्वीकार कर देंगे और उसका कल्याण कर देंगे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा चलो ठीक है उनका कल्याण होगा, लेकिन ये जो पशु पक्षी, ये जो जो पेड़ पौधे हैं उनका कल्याण कैसे होगा? हरिदास ठाकुर ने कहा कि आप इतने जोर से कीर्तन करते हो, वैष्णव आपके कहने के अनुसार इतने जोर से कीर्तन करते हैं, हरि नाम लेते हैं, उसको सुनकर उनका कल्याण हो जाएगा। और हरिदास ठाकुर ने कहा कि जो जब आप हरि नाम लेते हो तो वो पेड़ पौधों से टकरा के प्रतिध्वनि होती है, गूंजती है आवाज, एको होती है। तो हरिदास ठाकुर ने कहा मैं आपके चरणों में यह निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में यह प्रतिध्वनि नहीं है, वास्तव में ये जो पेड़ पौधे हैं ये आपके पीछे पीछे हरि नाम लेते हैं, ये इको नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि आपकी आवाज कहीं वैष्णव की आवाज कहीं टकराकर वापस आ रही है, वास्तव में पेड़ पौधे हरिनाम जप रहे हैं आपके पीछे। तो जो आपके पीछे हरिनाम जप रहा है उसके कल्याण में क्या संशय है? तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अगर यवन मलेच्छों का कल्याण हो जाएगा, अगर पशु पक्षियों का कल्याण हो जाएगा, पेड़ पौधों का कल्याण हो जाएगा, सारे भगवत धाम चले जाएंगे, तो क्या ये संसार खाली नहीं हो जाएगा? नहीं, क्या ये संसार खाली नहीं हो जाएगा? तो हरिदास ठाकुर ने कहा आप जब भगवान राम के रूप में आए थे तो आप सभी को अपने साथ भगवत धाम ले गए थे, क्या खाली हो गया? आप जब कृष्ण स्वयं आप भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए, आप पूरे संसार को भगवत धाम ले गए अपने साथ, क्या संसार खाली हुआ? वासुदेव दत्त से जो आपने प्रॉमिस किया है उसके चलते आप सभी जीवों को, जड़ चेतन सभी को आप भगवत धाम ले जाओगे, लेकिन ये संसार खाली नहीं होगा। आप प्लीज चिंता मत कीजिए, जो अभी परिपक्व नहीं हुए हैं, जिनकी चेतना अभी विकसित नहीं हुई है, वो जब समय के प्रभाव से उनकी चेतना विकसित हो जाएगी, वो सब जीव जो हैं वो पेड़ पौधे मच्छर पशु पक्षी इंसान के रूप में वापस इस धरा धाम को भर देंगे, आप इसकी चिंता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा आपने मेरा मन पूरी तरह से शांत कर दिया, मेरी चिंता को हर लिया आपने, आपकी जय। अब हरिदास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु को बोला मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे एक प्रार्थना है, मैं आपके चरणों में एक निवेदन करना चाहता हूं, अगर आपको उचित लगे, मेरे में ताकत नहीं है, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि आप अपनी लीला समेटने वाले हो, मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं आपका विनय बर्दाश्त कर सकता हूं, विनय बर्दाश्त कर सकूं, मैं आपको इस संसार से अंतर्धान होते देख सकूं, मेरे में ताकत नहीं है। तो मेरी आपके चरणों में रिक्वेस्ट है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज आप प्लीज मुझे परमिशन दीजिए कि मैं आपसे पहले चला जाऊं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे बगैर कैसा रहूं? तुमने तो अपनी बात कह दी कि तुम विरह बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर तुम चले गए तो मेरा क्या होगा? अगर चैतन्य महाप्रभु हम लोगों में से किसी को ये बात कह दें तो शायद हम फूल के कुप्पा हो जाए, फट जाए शायद। लेकिन हरिदास ठाकुर ने बोला एक मच्छर के, एक कीड़ी के, एक चींटी के मरने से क्या संसार में किसी को कोई फर्क पड़ता है? मेरे जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपको लेश मात्र भी फर्क नहीं आएगा, आप प्लीज मुझे जाने की इजाजत दीजिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, अभी मैं जा रहा हूं, और मैं कल आकर तुम्हारे से इस विषय में बात करूंगा। अगले दिन चैतन्य महाप्रभु सभी वैष्णवों को लेकर आए और सभी वैष्णवों को लाके उन्होंने भागवत कीर्तन शुरू किया। वक्रेश्वर पंडित डांस कर रहे थे उस कीर्तन में और चैतन्य महाप्रभु डांस कर रहे थे। हरिदास ठाकुर ने जबरन चैतन्य महाप्रभु को अपने सामने बिठाया और उनके चरण कमल पकड़ लिए हरिदास ठाकुर ने, और सब भक्त जोर जोर से कीर्तन कर रहे थे और हरिदास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल पकड़े हुए और उनके मुख कमल का दर्शन करते हुए आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। हरिदास ठाकुर की हरिदास ठाकुर के तिरोभाव के बाद, उनका शरीर छोड़ने के बाद चैतन्य महाप्रभु बहुत उन्होंने नृत्य किया और उन्होंने हरिदास ठाकुर के दिव्य शरीर को अपने खुद स्वयं उठाया और उठा के उनको समुद्र के पास ले गए और वहां पर अपने हाथों से हरिदास ठाकुर को स्नान कराया और समुद्र के पास हरिदास ठाकुर की समाधि बनाई और अपने हाथों से बालू अर्पण की हरिदास ठाकुर की समाधि। और हरिदास ठाकुर की समाधि बनाने के बाद सब भक्तों ने मिलकर चैतन्य महाप्रभु के साथ जोर जोर से कीर्तन किया और हरिदास ठाकुर ने कहा और चैतन्य महाप्रभु ने कहा, क्योंकि हरिदास ठाकुर ने यहां पर स्नान किया है समुद्र में, आज से ये जो समुद्र है ये सभी वैष्णव के लिए तीर्थ स्थल बन गया। हम जब भी जगन्नाथपुरी जाएं तो हमें जाकर उस समुद्र के जल का आचमन करना चाहिए, उसको अपने सिर पर धारण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हरिदास ठाकुर ने वहां पर स्नान किया है। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद है कि वो जो स्थान है वो पवित्र है, तीर्थ स्थल है। चैतन्य महाप्रभु ने यहीं पर उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं हरिदास ठाकुर के सम्मान में फीस्ट देना चाहता हूं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपनी झोली फैला के सिंह द्वार आए और वहां पर सभी जो शॉपकीपर से दुकानदार से अपनी झोली फैला के उन्होंने बोला कि आप प्लीज मुझे भिक्षा दो, मैंने हरिदास ठाकुर के तिरुभाव के सम्मान में फीस्ट कर दी। अपनी झोली फैला के उन्होंने सबसे भिक्षा मांगी। सारे जितने भी दुकानदार थे अपने दुकान का सारा सामान लेकर चैतन्य महाप्रभु के पास आ गए और उनकी झोली में डालने लगे। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने रोक दिया, रुको रुको। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना की कि आप प्लीज आप थोड़ा रेस्ट कीजिए, आप जाइए, हम फीस का प्रबंध करते हैं। और स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने सभी दुकानदारों को बोला, आप अपना सामान अपनी दुकान में वापस लेके जाइए, मैं आता हूँ आपके पास और आप सबसे सामान जितना भी आवश्यकता है लेकर जाऊंगा। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी उन्होंने चार वैष्णव लिए और चार जो सेवक लिए और इन आठ लोगों के साथ स्वरूप दामोदर गोस्वामी हर दुकान पे गए और उनसे थोड़ा थोड़ा सामान लिया और सामान लेकर वो आए वापस चैतन्य महाप्रभु के निवास स्थान पर गंभीरा में। और उस दिन काशी मिश्र ने चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण दिया था प्रसाद ग्रहण करने के लिए, तो जगन्नाथ मंदिर से भी बहुत सारा प्रसाद आया, काशी मिश्र ने भी बहुत सारे प्रसाद की व्यवस्था कर रखी थी। तो इस तरह से मिलकर सभी जगह से प्रसाद आया तो फीस्ट हुई। चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथ से सभी वैष्णवों को सर्व किया और बाद में स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आप बैठ जाएं और हमें भी मौका दें आपको सर्व करने का। तो चैतन्य महाप्रभु बैठे प्रसाद ग्रहण करने के लिए और उनको प्रसाद दिया और चैतन्य महाप्रभु ग्लोरीफाई कर रहे थे। चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि चैतन्य महाप्रभु ऐसे ग्लोरीफाई कर रहे थे हरिदास ठाकुर को जैसे पांच मुख होते हैं, रुक ही नहीं रहे थे ग्लोरीफाई करते थे। इतने इतना उनको इतनी बातें थी बताने के लिए, इतनी महिमाएं हरिदास ठाकुर की। तो हम लोगों को ये सीखना चाहिए कि ये तरीका है किसी वैष्णव आचार्य का आविर्भाव और तिरुभाव मनाने के लिए। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उस वैष्णव आचार्य के, अगर किसी का आविर्भाव या तिरुभाव आता है, अपने घर से कुछ बना कर लाएं और उनकी सेवा में प्रस्तुत करें और वैष्णव की सेवा करके उन वैष्णवाचार्यों को संतुष्ट करने का प्रयास करें। आप कुल मिला के देख लो, कोई भी बात निकल के आएगी उसमें वैष्णव की सेवा ही सर्वोपरि है। अगर हमने कृष्ण को प्रसन्न करना है, कैसे करेंगे? वैष्णव की सेवा के माध्यम से। अगर हमने प्रभुपाद को प्रसन्न करना है, कैसे करेंगे? वैष्णव की सेवा के माध्यम से। अगर हमने किसी वैष्णव आचार्य को प्रसन्न करना है, कैसे करेंगे? वैष्णव की सेवा के माध्यम से। वैष्णव की सेवा इतनी महत्वपूर्ण है, सेवा इतनी महत्वपूर्ण है। कृष्ण सेवा अगर करने का हमें अवसर मिलेगा तो कृष्ण सेवा करने का अवसर मिलेगा भगवान कृष्ण के भक्तों के माध्यम से, उनके संगी साथियों के माध्यम से। रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं कि अगर मैं कहीं जा रहा हूं और सामने अगर कृष्ण खड़े हो और कृष्ण बोले बात सुना है जरा, तो रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा। कृष्ण बोल रहे हैं बात सुनना, रघुनाथ दास गोस्वामी कहते मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन वो कहते हैं कि अगर कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ खड़े होंगे, वो नहीं भी बुलाएंगे तो मैं चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि सेवा श्रीमती राधा रानी और भक्तों के माध्यम से होती है। अगर कृष्ण अकेले खड़े होंगे, मैं जाऊंगा दौड़ के, कृष्ण चले जाएंगे, अंतर्ध्यान हो जाएंगे, मैं कृष्ण को नहीं पकड़ पाऊंगा। लेकिन अगर वैष्णव होंगे, श्रीमती राधा रानी होगी, प्रभुपाद होंगे, और तब अगर कृष्ण नहीं भी बुलाएंगे मैं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है प्रभुपाद के माध्यम से, वैष्णव के माध्यम से मुझे सेवा मिलेगी और सेवा के माध्यम से मैं भगवान कृष्ण के चरण कमल प्राप्त कर पाऊंगा। इसीलिए हमें कभी भी वैष्णव की सेवा का कोई भी अवसर खोना नहीं चाहिए। और श्री हरिदास ठाकुर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें वो वैष्णव सेवा करने का, हमें वो उत्साह, वो रुचि प्रदान करें, ताकि हम वैष्णव की और वैष्णव के माध्यम से श्री प्रभुपाद के माध्यम से पूरी गुरु परंपरा की और पूरी गुरु परंपरा के माध्यम से हम भगवान कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगा। श्री हरिदास ठाकुर की, श्री प्रभुपाद की। अगर आपका कोई